प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 12 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन सात नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं प्रेमचंद यादव, आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं। शेफा नाज क्वाद्री, आप सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। विकास यादव कटिहार बिहार से हैं। शिवानी सिंह रीवा मध्य प्रदेश से हैं। शंकर कुमार मुंबई से हैं। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा रीवा मध्य प्रदेश से हैं और भूपेश कुमार नवादा बिहार से हैं। तो प्रेमचंद, शेफा, विकास, शिवानी, शंकर, पुष्पेंद्र और भूपेश, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि हम लोग न्यूज एनालिसिस पर आए, मुझे एक सूचना देनी है। और सूचना क्या है? कल की सूचना का ही पुनर्स्मरण है। कल मैंने उन स्टूडेंट्स के बारे में एक सूचना दी थी जो अभी 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली क्लासेस के लिए आने वाले हैं। मैंने उन्हें बताया था कि afis.com पर जो टॉप पर ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया गया है और मित्रों उसके लिए डेट निर्धारित कर दी गई है कि 17 सितंबर से पहले पहले आप उसे भरकर भेज दें। मैंने कल स्पेशली आप सबसे रिक्वेस्ट किया था, तो प्लीज आप 17 सितंबर की बिल्कुल प्रतीक्षा न करें, आप इसे प्रायोरिटी दें और जैसे ही आपको ये फॉर्म दिखाई देता है प्लीज उसे तुरंत भरें और सेंड कर दें। मैंने उसके साथ ही एक और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज यदि आपके कोई परिचित भी आपके साथ आ रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं तो उन्हें अपने स्तर पर इस बात की सूचना दे दें ताकि उन्हें पता लग जाए कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस दिन कल का ऑडियो ही न सुन पाए हों। कभी कभी ऐसा इत्तफाकन हो जाता है, संयोग भी हो जाते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करें, इससे एकेडमी को बहुत आसानी भी होगी और यूं मानकर चलिए कि आपकी भी ट्रेनिंग का एक छोटे से हिस्से की शुरुआत हो चुकी है और आपको यहां जितनी भी आपके इस तरह की ट्रेनिंग होगी, इस तरह के काम दिए जाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि उसमें आपको 100% मार्क्स मिले आप और आप ये हासिल करेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आइए न्यूज पर। आज हम लोग बात करेंगे विषय के रूप में अपने एजुकेशन सिस्टम पर। आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन सिस्टम के विषय को मैंने मुख्य विषय के रूप में क्यों चुना है। मित्रों, उसका कारण आपकी समझ में शायद आ गया होगा और अगर नहीं आया हो तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि सर ने आज एजुकेशन सिस्टम के विषय का चयन क्यों किया है। ये ठीक उसी तरह से है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विस में कोई क्वेश्चन पूछा गया, चाहे प्री में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए, ठीक है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप इस चीज के बारे में विचार नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाते हैं और आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तब आपको इत्मीनान से थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे इन सारे इस तरह के प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया ये क्यों पूछा गया है। तब फिर आप देखेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करेगा, अरे इसके पीछे तो ये कारण है, आपको कारण नजर आएंगे। और याद रखिए कि उसमें से ज्यादातर कारण आपको सिलेबस में नजर नहीं आएंगे, आपको ज्यादातर कारण करेंट अफेयर्स में नजर आएंगे। ये बात अलग है कि हम उस दिन का करंट अफेयर्स सुनने में चूक गए या न्यूज से हम उसे सीधे सीधे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में या मेंस में, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनका संबंध करंट अफेयर्स से होता है। मैं सबका नहीं कह रहा हूं लेकिन ज्यादातर डेफिनेटली करंट अफेयर्स से ही संबंधित होते हैं। तो बट नेचुरल है फ्रेंड्स कि आप सोच करके देखिए कि अगर मैंने एजुकेशन सिस्टम को चुना है तो कोई ना कोई करंट अफेयर्स होगा, और मैं जो करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं वो कल का ही करंट अफेयर की बात होगी, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ताजे विषयों को लेकर के चलते हैं, आप जानते हैं। हाँ, सिविल सर्विस एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक साल से सवा साल तक के करंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे, तो वहां आपके लिए थोड़ा सा संकट हो सकता है कि याद ना आए, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तुरंत याद आ सकता है और मुझे यकीन है कि अब आपको इतना सुनने के बाद याद भी आ गया होगा। और मित्रों याद करिए, इसका संबंध सीधे सीधे आपकी जो ऑल इंडिया रेडियो की पहली खबर थी उससे है, जिसमें यह बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल, आप देखा, नए भारत के बारे में युवाओं से बात करते हुए, खासकर शिकागो अधिवेशन में जो हमारे विवेकानंद जी का जो उद्बोधन रहा है उसके 125 वर्ष की वर्षगांठ पर उन्होंने युवाओं से जो कहा, न्यूज में क्या लिया गया, न्यूज में यह लिया गया कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो नवाचार और रचनात्मकता के केंद्र बने, विश्वविद्यालय, ये बात वो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण अवसर पर कह रहे हैं और देश के युवाओं से कह रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब सारी चीजें महत्वपूर्ण है, देखिए अवसर महत्वपूर्ण है, जिससे कहा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, तो सीधी सी बात है कि जब इतने महत्वपूर्ण है तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि वो टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, राइट? इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो थोड़ी सी खबरें हैं उन्हें आप, उसमें कुछ अखबार की भी बात अब आपसे कर रहा हूं और कुछ न्यूज की भी बातें कर रहा हूं। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी भारत आए हुए हैं, ये भी न्यूज में था और भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी की उनसे बात हुई है। मित्रों, मुझे लगता है कि इस बार के मेंस के लिए भारत अफगानिस्तान संबंध एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं पहले भी उस समय चर्चा की कर चुका हूं जब अमेरिका ने एक तरीके से अपनी अफगान नीति और खासकर पाकिस्तान के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन किया था। आपने देखा था कि उसने सीधे सीधे पाकिस्तान को कहा कि नहीं, वो आतंकवादियों की एक तरह से जमीन बन रहा है, वहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और भारत से उसने कहा था कि वो अफगानिस्तान में अपनी जो सहयोगात्मक भूमिका है उसको बढ़ाए, और साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अफगानिस्तान में जो हमारी सेनाएं हैं वो वापस नहीं बुलाई जाएंगी बल्कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो ये टर्न अराउंड था, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रति जो अमेरिका की नीति थी उसमें एक जबरदस्त बदलाव था, और इस बदलाव में जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंसी थी सच पूछे तो भारत की थी, मतलब भारत की उसमें एक सही होने का, या कह लीजिए श्रेष्ठ होने का, या महत्वपूर्ण होने का, या नेतृत्व करने का कहीं ना कहीं भाव छिपा हुआ। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान के बारे में आप जानते हैं, दो तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक तो हमारे यहां जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनके जो कैंप हैं, प्रशिक्षण कैंप हैं, वो काफी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, तो वो भारत के लिए एक सिरदर्द जैसा होता है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत और प्रगाढ़ होते जाते हैं, जो है ही ऑलरेडी ही है, तो डेफिनेटली अब अमेरिका ने चूंकि ये बात कहकर उसके ऊपर दबाव डाला है पाकिस्तान पर, तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जो सबसे बड़ी बात है मित्रों, चलिए ये तो एक समझौते होते हैं, एक अलग तरीके के चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे देश के लिए अपरिहार्य कैसे बनते हैं, दूसरे देश को कैसे लगे कि आप सच में उसके बहुत बड़े मददगार हैं। तो देखिए, जो अविकसित राष्ट्र हैं या जो विकासशील देशों में भी जो नीचे पायदान पर हैं, उन्हें सहयोग की बहुत जरूरत होती है। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास कैपिटल नहीं होता, उनके पास उस लेवल के उद्योग धंधे नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई देश सीधे सीधे मदद की हाथ बढ़ाता है तो डेफिनेटली वो उनसे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ते हैं, और भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो लगभग लगभग अब इस स्तर पर आ गए हैं। भारत मतलब वहां लगभग $2 अरब आप सोचिए कि इन्वेस्ट करके और सहायता कार्यक्रम चला रहा है, और 116 नई परियोजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। वहां के जो पुलिस हैं उनको प्रशिक्षण भारत देने का काम करता है, वहां के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको भारत के, हमारे यहां के जो आर्मी कॉलेजेस हैं, आर्मी ट्रेनिंग कॉलेजेस, वहां प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो दूसरी बातें हैं वो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है मित्रों की भारत और अफगानिस्तान के संबंध का प्रगाढ़ होना और अच्छा होना, और अमेरिका की इस नीति में बदलाव डेफिनेटली न केवल भारत के ही महत्व को इस क्षेत्र में बढ़ाता है बल्कि एक तरीके से स्थिरता आएगी और आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, इस बारे में थोड़ा सा आश्वस्त भी करता है, ये एक तरीके से इसका निष्कर्ष हुआ। मित्रों, एक खबर है कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, आप देख रहे हैं कि भारत आने वाले हैं शिखर बैठक में भाग लेने के लिए, भारत जापान का जो शिखर बैठक होगी उसमें भाग लेने के लिए आने वाले हैं। जापान भी भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र हो गया है, खासकर इधर जो हिंद महासागर और ये पूरा का पूरा जो महासागरीय सुरक्षा है हमारी टूवर्ड्स चाइना, यानी कि जो हमारा महासागर का हिस्सा है, पूर्व की तरफ आप चले जाइए तो जापान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और कर सकता है, करेगा, और फिर अभी जो उत्तरी कोरिया की स्थिति है उसको देखते हुए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस शिखर सम्मेलन पर है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अभी सामान्य बात नहीं रह गई है, तो डेफिनेटली जापान और भारत के बारे में जो बातचीत होंगी उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन चूंकि हम सितंबर के बिल्कुल मिड में हैं, थर्ड वीक में अक्टूबर के मेंस एग्जाम होने हैं, तो जापान के इस हिस्से को हम उस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं मान सकते कि मेंस में काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम कर सकता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों आखिरी में पब्लिक स्पीक के अंतर्गत देखा आपने कुपोषण मुक्त भारत के बारे में बातचीत होनी है, तो प्लीज इसे आप जरूर सुने क्योंकि सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुपोषण, ये आपको सुनना चाहिए। मित्रों अब आइए मैं मुख्य विषय पर आता हूं, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। फ्रेंड्स इस शिक्षा प्रणाली को हम नवाचार तक सीमित रखेंगे, नवाचार के लिए क्या होता है, और थोड़ी सी चलिए इधर उधर की भी बात करते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट सी जानकारी मिल जाए। देखिए नवाचार को इंग्लिश में हम इनोवेशन कहते हैं, रचनात्मकता भी वही है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रचनात्मकता का मतलब है कि आप कुछ नया रचते हैं, नया बनाते हैं, नया क्रिएट करते हैं, और वही है नवाचार, राइट। प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये कहते हैं कि नवाचार के बिना तो ये जो जीवन है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मरे हुए जीवन के समान है। तो अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि ये नवाचार आएगा कहां से, राइट। ये नवाचार हवा में नहीं आता है, सोचने से नहीं आता है, सच पूछे तो ये नवाचार प्रशिक्षण से भी नहीं आता है। अगर आप सोचेंगे कि किसी को नवाचार की ट्रेनिंग दे करके आप नवाचार पैदा कर दें तो वो संभव नहीं है। ट्रेनिंग देकर के आप उसे कुशल तो बना सकते हैं, दक्ष बना सकते हैं, जो वो काम कर रहा है उसमें आप दक्ष बना सकते हैं, लेकिन दक्षता का मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में नई चीजें पैदा होंगी। बल्कि सच पूछिए तो एक थॉट स्कूल यह भी है कि कहता है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर देते हैं, उसके दिमाग में ढेर सारी चीजें भर देते हैं, तो नवाचार के लिए जगह ही नहीं रह जाती, उसके दिमाग में तो सारा भरा हुआ है ना, तो नया कहां से सोचेगा। बेसिकली फ्रेंड्स जो नवाचार आता है वो एक एनवायरमेंट से आता है, टोटल एनवायरमेंट होता है। मतलब मैं जो एनवायरमेंट कह रहा हूं ये प्राकृतिक एनवायरमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये संपूर्ण स्थितियां मिलकर के जो हमारा जीवंत समाज है जिसमें हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके जो अलग अलग शाखाएं हैं उनका वातावरण कैसा है, वहां से नवाचार पैदा होता है। यानी कि हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग को हमने कितना स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, और कैसे हम उनके दिमाग की जुताई करके और उसमें नएपन के बीज बो रहे हैं। तो ये बेसिकली जो नवाचार है, एक तो सामाजिक वातावरण की मैंने बात कही, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि खेत की जुताई करके, दिमाग की जमीन की जुताई करके, तो ये जुताई करना क्या है, ये जुताई करने का मतलब है एजुकेशन सिस्टम, कि हम एजुकेशन कैसी दे रहे हैं, क्या उस एजुकेशन में अपनी तरफ से सोचने समझने की गुंजाइश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके दिमाग को, अपने जो स्टूडेंट है अभी के जो बच्चे हैं यही तो आगे जाकर के नवाचार करेंगे, इनोवेट करेंगे, तो हम इनके दिमाग को ठस बना रहे हैं, इनके दिमाग को एक तरीके से इंफॉर्मेशन का जमावड़ा बना रहे हैं, या कि उन्हें इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपनी तरफ से चीजों के बारे में सोचें, अपनी तरफ से उसके बारे में विचार करें और कुछ नई नई चीजें लाएं। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखें, चाहे वो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम हो या प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम हो, दुर्भाग्य यह है कि वो केवल नंबर लाने तक सीमित है कि ब्रिलियंट कौन है, 99% मार्क्स आ रहे हैं, 100% मार्क्स आ रहे हैं, और उनके अखबारों में नाम भी छपते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि आप देखिए कि जो लड़के, अब हर साल यही होता है, 10th में 99%, 12th में 99% मार्क्स आते हैं, फिर ये कहां चले जाते हैं, ये चीजें इनोवेट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए सीईओ बन जाना, यंग एज में किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाना इनोवेशन नहीं है, है ना, वो तो नौकरी हो गई, आप वो तो प्रबंधन कर रहे हैं। इनोवेशन होता है जिसमें आप अपनी तरफ से कोई नई चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग ने अगर व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जब लेकर के जब आए तो वो इनोवेट किया है ना, उन्होंने दुनिया को एकदम एक नई चीज दी है, तो वो तो आपके क्रिएटिव माइंड से आएगी, और क्रिएटिव माइंड होगा जब आप लोगों के दिमाग को ओपन रखें, उनको इतना स्पेस दें जहां वो अपनी बात सोच सकें, अपनी तरफ से चीजें लिख सकें, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली इसके बिल्कुल विरोध में है। हमने अपनी परीक्षा प्रणाली इस तरीके से बना रखी है कि आप रटिए और रटने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी क्षमता है, मार्किंग है, इस आधार पर होगी कि आप उस रटे हुए को कॉपी में कितना ज्यों का त्यों उतार पाते हैं। मतलब हमारा दिमाग इनोवेटिव माइंड न होकर के एक तरह से फोटोग्राफिक माइंड हो गया है। किताब की फोटो खींचिए क्या लिखा गया है और कॉपी पर छाप आइए, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे हायर एजुकेशन के लिए आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, वहां भी आप फिर लगभग यही करेंगे। तो आपने एक ये बात तो प्रूफ कर दी कि आपका जो दिमाग है वो फोटोग्राफिक माइंड है, वो अद्भुत माइंड है और यू कैन स्कोर द मार्क्स। लेकिन उससे ये कतई प्रूफ नहीं होता है कि आप इनोवेशन भी करने का दिमाग रखते हैं, ये प्रूफ नहीं होता है। मित्रों, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है और शुरू से इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे हैं। मतलब 1980 से तो जो होश, जब से मैं होशो हवास में हूं, आप कह लीजिए चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सोचने समझने की मेरी स्थिति हो गई थी, तब से मैं देख रहा हूं कि बस्ते का बोझ कम किया जाए, इन्फॉर्मेशन का रोल कम किया जाए, लोगों को लॉजिकल बनाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता है। और जब से खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं एजुकेशन में और खासकर हायर एजुकेशन में, तब से सच पूछिए तो जो लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए हायर एजुकेशन, उसका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका स्तर तो खराब हो ही रहा है। मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन की तो हालत देख लीजिए, वो टीचर्स की जगह शिक्षा कर्मी हो रहे हैं, कुछ शिक्षा मित्र हो रहे हैं, मतलब किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है। और हालत ये हो गई है कि अब गरीब से गरीब परिवार के माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बेचारे उसका फीस अफोर्ड कर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते यही हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख ले तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइमरी एजुकेशन ही पुअर होगी, आप सोच करके देखिए, खेत की जुताई ही अगर ठीक से नहीं हुई प्राइमरी लेवल पर, तो आप आगे चल करके उससे अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो सच पूछिए फ्रेंड्स, तो हमारे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक का जो ढांचा है उसमें से क्वालिटी खत्म हो गई है, इनोवेशन की संभावनाएं खत्म हो गई है, मतलब बहुत कम हो गई, खत्म हो गई है तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन के भी और हायर एजुकेशन के भी, जहां इन चीजों को तरजीह दी जाती है। लेकिन अगर हम ज्यादातर की बात करें तो लगभग यही स्थिति है, और जिसको लेकर के शिक्षा शास्त्री भी काफी चिंतित हैं, समाज शास्त्री भी काफी चिंतित हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। देखते हैं कि अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है उसमें सरकार क्या क्रांतिकारी बदलाव करती है। कॉस्मेटिक चेंजेस से बात नहीं बनना है, बहुत ज्यादा परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो मित्रों, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में कुछ अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: रवीश कुमार पटना बिहार से, नवीन कुमार मिश्रा अभय सिंह दरभंगा बिहार से, अनामिका शर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, चमकौर सिंह बाघेवालिया पंजाब से, अनूप चंद्रा, महेश कुमार तिवारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, राजेश मीना विशाल जमशेदपुर से, तन्मय घोष कोलकाता से, सिद्धार्थ कपूर प्रद्यन्या कांबले मुंबई से, वरुण कुमार नई दिल्ली से, और इलेना जोसेफ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।